हरे कृष्णा। सो आप सबका इस साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है आपका। तो ये हम भगवद गीता पे चौथा सेशन कर रहे हैं हम लोग। सो हमने भगवद गीता के महत्व पे बात की थी, भगवद गीता का क्या महत्व है। फिर हमने बात किया था कि भगवद गीता को समझा कैसे जा सकता है। फिर हमने बात किया समझने में, भगवद गीता को समझने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, फैक्टर है भगवद गीता को समझने का, वो क्या है, एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेना। हम भगवद गीता कितने ही हम सुपर इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर हमें भगवद गीता भागवतम इन ग्रंथों को समझना है अगर, तो हमें एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। और प्रमाणिक गुरु कौन है? जो परंपरा से आता है, जो कृष्ण पर पूर्णतः आश्रित है ना। जैसे हमने बात की श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस कौन की स्थापना की, तो हम सब लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद की इच्छा को पूरी करने के लिए। श्रील प्रभुपाद की इच्छा है कि भगवान कृष्ण की शिक्षाएं घर घर में जाएं। क्यों घर घर में जाएं? क्योंकि हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है ना। और एक ग्रंथ है पद्म पुराण। सो पद्म पुराण में भगवद गीता का महात्म्य दे रखा है। तो सेकंड चैप्टर का जो महात्म्य है, उसमें भगवान कृष्ण लक्ष्मी को बता रहे हैं कि देखो, अगर आप सुख और शांति चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आप लोग सुख और शांति चाहते हो? आप चाहते हो सुख और शांति? सो अगर हम लोग सुख और शांति चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण उसका उपाय बता रहे हैं लक्ष्मी जी को कि आप लोगों को भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है उसका नित्य पाठ करना चाहिए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि चलो हमारा मन शांत हो गया, हम संतुष्ट हो गए, लेकिन घर वालों का क्या है ना। चलो मैं सुख हो गया, मुझे शांति है, लेकिन अगर घर में क्लेश है, अगर घर में असंतोष है, तो उसका इफेक्ट मेरे पे आएगा ही घूम फिर के, नहीं। तो भगवान कृष्ण ने लक्ष्मी जी को बताया कि भगवद गीता के जो ये सेकंड चैप्टर है, दूसरा अध्याय, इसको पढ़ने का इतना महत्व है कि आपका जो वो एरिया है, जो आपका घर है, पूरा घर ही शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। दूसरों ने चाहे नहीं पढ़ा, सिर्फ आप पढ़ रहे हो, तो भी आपके घर के सारे लोग एकदम सुखी और शांत हो जाएंगे, है ना। सिर्फ करना क्या है कि दूसरा चैप्टर हमें रोज दोहराना है, और बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, 10-15 मिनट लगते हैं। आप शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम कम हो जाएगा। पूरी भगवद गीता भगवान कृष्ण ने 35 से 40 मिनट के अंदर बोली थी, है ना। हम लोगों को बहुत टाइम लगता है क्योंकि एक संस्कृत नहीं आती, हमें अभ्यास नहीं है, रुचि नहीं है, लेकिन अगर हम बार बार करेंगे तो हम कर सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, अभी उनका देहांत हो चुका, पश्चिम बिहार में रहते थे वो डेली 35-40 मिनट में पूरी भगवद गीता बोल लेते थे वो, और डेली पूरी भगवद गीता बोलते थे। सो इतना मुश्किल नहीं है, और एक्चुअली में इससे भी मुश्किल काम हम लोग रोज करते हैं, नहीं। इतना ट्रैफिक होता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, और अगर आप बाई चांस गुड़गांव की तरफ जाएं तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 80 की स्पीड में गाड़ियां भगाते हैं। कोई ये नहीं सोचता आगे वाले ने ब्रेक मार दी क्या होगा, एकदम अंधाधुंध भगा रहे हैं, है ना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्रेक नेक स्पीड, नहीं। ब्रेक नेक स्पीड का मतलब है एक्सीडेंट हुआ, बचेगा नहीं व्यक्ति, नहीं। तो लेकिन हम अपना पूरा जौहर दिखाते हैं वहां पर, पूरा अपना प्रयास एनर्जी हम दिखाते हैं, नहीं। सो भगवद गीता रिसाइट करना, भगवद गीता का उच्चारण करना, वो भी स्पेशली देख के, इतनी मुश्किल बात नहीं है, है ना। सो भगवान कृष्ण लक्ष्मी जी को कह रहे हैं कि पूरा एरिया जो है आपका, पूरा घर आसपास सब जो है एकदम वहां पर सुख और शांति छा जाएगी। और भगवान कृष्ण ने लक्ष्मी जी को उदाहरण दिया, उन्होंने बताया कि पंढरपुर में एक जगह है, उन्होंने बताया कि वहां पर एक स्थान था, वहां पर शेर चीते और भेड़ बकरियां आराम से बैठे हुए एक दूसरे से गले लग के, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। इनफैक्ट एक बार क्या हुआ कि एक शेर एक बकरी का शिकार कर रहा था, दौड़ रहे थे, बकरी आगे दौड़ रही थी, शेर पीछे दौड़ रहा था, और उसने जैसी झपट के शेर ने बकरी को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही पकड़ा उसको छोड़ दिया। तो बकरी ने पूछा, भाई तुमने छोड़ क्यों दिया? उसने कहा, पता नहीं, मारने का मन ही नहीं कर रहा मुझे, है ना, मुझे मन ही नहीं करना मारने के लिए। तो उन दोनों ने, तो बकरी ने कहा, मेरे भी मन से मृत्यु का भय खत्म हो गया। शेर को बकरी कह रही है कि मुझे भी अब मरने से डर नहीं लग रहा है ना, ये पता नहीं इस जगह में ऐसी क्या खास बात है। तो फिर दोनों ने मिलकर खोजा उसके कारण को, गडरिये से पूछा, फिर एक बंदर बैठा हुआ था बहुत बूढ़ा, तो उन्होंने उससे पूछा, तो उसने कहा, हाँ मुझे पता है क्यों कारण है। तो उसने बोला कि यहाँ पर एक व्यक्ति रहता था, वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति यहाँ पर रोज भगवत गीता का जो सेकंड चैप्टर है डेली पढ़ता था। तो सेकंड चैप्टर डेली पढ़ने से क्या हुआ इस इलाके में, अभी वो चला गया, अभी कोई पढ़ नहीं रहा वहां पर, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी बाकी है वहां पर, है ना। जब वो था तब भी वो प्रभाव वहां पर आ गया था कि आपस में कोई लड़ झगड़ नहीं रहा था, सब लोग सुख और शांति से रह रहे थे। तो अगर हम लोग सुख और शांति से रहना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले सुख और शांति से रहें, तो कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ हमें एक भगवत गीता लेनी है। ये भगवत गीता है, श्रील प्रभुपाद ने इसका अनुवाद किया, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं भगवत गीता एज इट इज। एज इट इज मतलब जैसा भगवान का मंतव्य था, जैसे भगवान जिस उद्देश्य से भगवत गीता को बोल रहे थे, श्रील प्रभुपाद ने उसी उद्देश्य को कैप्चर कर लिया इसके अंदर, इस उद्देश्य को पूरे विस्तार से और बहुत सारे 100 से अधिक शास्त्रों से उन्होंने क्रॉस रेफरेंस देके, उन्होंने प्रभुपाद ने बताया कि भगवान क्या चाहते हैं। क्रॉस रेफरेंसिंग क्यों करते हैं, जैसे वकील करते हैं ना क्रॉस रेफरेंसिंग, नहीं कि वहां पर उस केस में फलाने केस में ऐसा हुआ था और ढिमकाने केस में ऐसा हुआ था, तो अपना जो पॉइंट है उसको स्ट्रांग करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद ने भी अनेक शास्त्रों का जो है सहारा लिया, उन्होंने बताया कि देखो जो बात यहाँ पे लिखी है वो कठोपनिषद में भी लिखी हुई है, वहां पर जो बात यहाँ लिखी है भागवतम में भी लिखी है, जो बात इधर लिखी है वो पद्म पुराण में लिखी है, स्कंद पुराण में लिखी है, गरुड़ पुराण में लिखी है ना, अनेक शास्त्रों का उन्होंने उदाहरण दिया। वो उदाहरण लेने से हमें श्रद्धा आ जाती है बाद में वजन आ जाता है, नहीं कि हाँ वाकई में मतलब इतनी सारी जगह एक बार बोली जा रही है तो मतलब कुछ तो बात होगी ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग लोगों को अगर कोई बात बोली है, आपस में वो बात मैच कर रही है, इसका मतलब कुछ उसके अंदर वजन है, कुछ उसके अंदर तत्व है, कुछ सार है उसके अंदर। तो अर्जुन घर से तो चला था लड़ने के लिए, और उसको पूरी पिक्चर क्लियर थी उसको कि मैं जा रहा हूं और वहां पे मेरे साथ कौन लोग खड़े होंगे और मेरे अगेंस्ट कौन लोग खड़े होंगे, बिल्कुल क्लैरिटी थी अर्जुन को। लेकिन जब अर्जुन युद्ध के मैदान में पहुंचा तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से युद्ध शुरू होने से बिल्कुल कुछ टाइम पहले एक अजीब सी उसने रिक्वेस्ट की। अर्जुन ने बोला कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, नहीं तो अर्जुन ने बोला कि हे कृष्णा, उभयोर सेनयोर मध्ये रथ स्थापयित्वा मेच्युत, कि हे अच्युत, हे कृष्णा, प्लीज आप जो ये रथ है दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। क्यों खड़ा कर दीजिए? ताकि मैं इस तरफ भी देख लूं और इस तरफ भी देख लूं, दाईं ओर भी देख लूं और बाईं ओर भी देख लूं कि मेरी ओर से कौन युद्ध कर रहा है और मेरे अगेंस्ट कौन है, और मैं देख लूं कौन कौन मरने के लिए यहाँ पर आया। भगवान ने वो रथ स्थापित कर दिया वहां पर। तो भगवान ने कहा ओके फाइन, आप देख लीजिए अभी आप क्या देखना चाह रहे। तो जब अर्जुन ने देखा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, हाँ, और अपने इधर भी सारे सेनाओं को देखा और उसको दुर्योधन को देखा, सारे बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया। अर्जुन ने बोला कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जहां भी देख रहा हूं अंधकार दिख रहा है। अगर अभी सिचुएशन क्या है कि मैं या तो युद्ध कर सकता हूं या युद्ध नहीं कर सकता, है ना। तो अर्जुन ने कहा कि अगर मैं युद्ध नहीं करता तो मेरे बिना तो जीत ही नहीं पाएंगे ये लोग, हार जाएंगे, है ना। अगर मैं युद्ध करता हूं तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो मैं जीत जाऊंगा और या मैं हार जाऊंगा। अभी आप यशस्वी चैंटिंग कर रहे हो अभी आप, तो लेक्चर में चैंटिंग नहीं करो, लेक्चर में लेक्चर सुनो, ओके। चैंटिंग आप बाद में कर लेना, फाइन, ओके। सो अर्जुन ने कहा कि या तो जीतूंगा या हारूंगा, तो अगर हार गया तो मतलब हार ही गया, और मैं हारूंगा कब, जब मैं भी मर जाऊंगा, नहीं। जब तक अर्जुन खड़ा है, जब तक युधिष्ठिर खड़ा है मैदान में, जब तक भीम इत्यादि ये सब खड़े हैं, एक भी व्यक्ति अगर खड़ा है, एक भी पांडव खड़ा है, तब तक युद्ध बंद थोड़ा ना हो सकता है, युद्ध तो चालू रहेगा ना। तो अर्जुन ने कहा कि अगर मैं हार गया मतलब मैंने शरीर छोड़ दिया, मेरी डेथ हो गई, तो मैं हार ही गया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं जीत गया तो क्या मैं वाकई में जीत गया। चारों ओर से दोनों तरफ अंधाधुंध लोग अस्त्र शस्त्र बरसाएंगे, करोड़ों लोग मारे जाएंगे, जिनको मैं अच्छी तरह से नहीं जानता वो भी मारे जाएंगे, और जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जो मेरे बहुत प्रिय हैं, जो मेरे से छोटे हैं, मेरे बराबर के हैं, मेरे पिता समान है, मेरे दादा समान है, मेरे गुरु हैं, सभी मारे जाएंगे इसके अंदर। तो क्वेश्चन ये है कि चलो मान लिया मैंने युद्ध लड़ा, जीत गया, अब जीत के मुझे बहुत बड़ा साम्राज्य मिलेगा, नहीं, तो अब उस साम्राज्य को भोगूंगा किसके साथ। अगर फ्रेंड्स होंगे, अगर रिलेटिव्स होंगे तो ही तो दिखाऊंगा ना, देखो मेरे पास कितनी बड़ी कार है, कितना बड़ा घर है, है ही कोई नहीं तो फिर करूंगा क्या उस पैसे का, किसको दिखाऊंगा, किससे अपना सुख और दुख साझा करूंगा। तो मुझे तो लग रहा है कि अगर मैंने वो युद्ध जीत लिया तो भी हार ही दिख रही है मेरे को। तो अर्जुन ने बोला कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, कि हे कृष्णा मेरा दिल जो है वो डूबा जा रहा है, कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना। तो भगवान ने कहा अच्छा फिर क्या करना चाहते हो। अभी तक अगर आप देखें इस पूरे प्रकरण में कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे, कृष्ण सिर्फ सुन रहे हैं और बस ओके फाइन, क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। अभी भगवान कृष्ण ने बोलना शुरू ही नहीं किया, वो देख रहे थे कि अर्जुन कब रियलाइज करेगा कि मैं खुद इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता, मुझे एक अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, एक गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। तो फिर हमने देखा कि फाइनली अर्जुन ने अपने हथियार रख दिए, गांडीव धनुष रख दिया, जबकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, अगर किसी ने मुझे बोल दिया ना गलती से, कह रहा है गांडीव साइड पर रख दे भैया, तेरे बस की नहीं है, तो कह रहा है उसको मार दूंगा मैं। और वही अर्जुन वो गांडीव को पकड़ के नहीं रख सका, कह रहा है मेरे हाथ में टिकी नहीं रहा गांडीव, नहीं मेरे से गांडीव जो धनुष है उसका भार नहीं उठाया जा रहा, तो एक साइड पर रथ में रख दिया। तो अर्जुन ने बोला कि कृष्णा मैं आपकी शरण लेता हूं, आप प्लीज मुझे गाइड कीजिए। तो वो अर्जुन की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, अर्जुन ने एक हायर अथॉरिटी की शरण ली। इस बात से हमें ये समझ में आती है, एक ये लर्निंग आप कह लीजिए, कि हम लोगों को भी अगर सुख और शांति चाहिए तो हमें भी एक हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, एक गुरु के पास जाना पड़ेगा, है ना। जब तक हम गुरु के पास नहीं जाएंगे, हम एफर्ट्स तो बहुत करेंगे, जो कि कर भी रहे हैं हम लोग, लेकिन जो सुख और शांति है हमेशा एल्यूड करेगी, हमेशा हमारे से थोड़ी दूर रहेगी। जैसे गधा होता है ना, आपने वो मैनेजमेंट की बुक्स में पिक्चर दिखाते हैं कि गधा है वो एक स्टिक, एक लकड़ी की डंडी लटकाई होती है और उसके उस कोने पे गाजर बंधी होती है। तो गधा क्या सोचता है, यार ये 1 मीटर दूरी तो है गाजर, 2 कदम चल लूंगा मिल जाएगी। और वो डंडी बंधी कहाँ हुई है, गधे की गर्दन के साथ बंधी होती है। तो गधा 1 कदम आगे चलता है तो गाजर वहीं खड़ी रहती है गाजर भी 1 कदम आगे बढ़ जाती है। गधा सोचते हैं अभी तो यही थी, क्या चक्कर है। तो थोड़ा स्लो चलता है कि हो सकता है यार सरक गई हो मेरे चलने से, तो थोड़े धीरे से कदम उठाता है तो गाजर भी धीरे से आगे बढ़ जाती है। तो गधा कहता है यार प्रॉब्लम लग रही है, तेज भाग कर देखता हूँ, तेज भागता है तो भी कुछ हासिल नहीं होता है ना। तो हम लोग भी इसी तरह से, आई एम सॉरी टू से, बट हम लोग भी गधे की तरह भाग रहे हैं। नहीं, हम सोच रहे हैं कि खुशी मिल जाएगी, हमें सुख मिल जाएगा, हम ये एक काम और कर लें तो सुख मिल जाएगा। वो काम अगर बाय चांस हो भी गया तो सुख मिलता नहीं है एक्चुअली, है ना। मेरा एक फ्रेंड था, मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी इस बारे में, वो राजेश चांदी रमानी उसका नाम है ना। ऐसे नाम लेना नहीं चाहिए क्योंकि मैं ये पोस्ट करता हूँ इंटरनेट पे, कभी उसने डाउनलोड करके देख लिया तो नाराज हो जाएगा मेरे से वो इंडिया से यूके शिफ्ट हो गया। वो बहुत महत्वाकांक्षी था वो। तो मुझे जब वो इंडिया में था तो मुझे कहता था, कह रहा है भाई मेरे ना बड़ी एक तीव्र इच्छा है, एक मेरी डिजायर है बहुत स्ट्रांग। मैंने अच्छा भाई क्या डिजायर है तेरी, तो उसने कहा यार मेरे पास ना आई डोंट नो कौन सी गाड़ी है, रॉल्स रॉयस है हाँ, जो सबसे महंगी गाड़ी है, मेरे पास रॉयस रॉयस होनी चाहिए, या पता नहीं मर्सिडीज, उसने कुछ इंग्लैंड में सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है, रॉयल्स रॉयस होगी ना, व्हाट डू यू से। तो उसने कहा वो गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। हाँ, तो मैंने कहा ओके फाइन ठीक है भाई। तो वो बाय चांस हुआ कि उसका जो है उसको यूके में जॉब मिल गई, तो जॉब मिल गई वहाँ पहुँच गया। तो 2-3 साल के बाद वापस इंडिया आया तो मुझसे मिला वो। तो उसने कहा, मैंने कहा और सुना भाई क्या चल रहा है, उसने कहा हाँ यार सब ठीक चल रहा है। मैंने ना वो रॉयल्स रॉयस, मैंने उससे पूछा, मैंने अगर वो तेरी डिजायर थी भाई रॉयल्स रॉयस खरीदनी, क्या हुआ। उसने कहा खरीद ली मैंने। मैंने कहा अच्छा, तो बड़ा मजा आया होगा। उसने कहा यार पूछ ही मत, बहुत मजा आया मेरे को। कह रहा मैंने रॉयल्स रॉयस खरीदी, बैठा गाड़ी के अंदर और मैंने रॉयल्स रॉयस गाड़ी में बैठ के वहीं से मैंने इंडिया फोन किया अपने मम्मी डैडी को। अब मैंने बोला मैं रॉयल्स रॉयस में बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने यार कमाल हो गया, कितने लोगों की इच्छा पूरी होती है, बहुत कम लोग होते हैं। तो मैंने कहा कितनी देर हो गई खरीदे हुए, कह रहा यार 6 महीने हो गए। तो मैंने कहा अभी भी वो मजा आ रहा है जो उस दिन आया था कह रहा नहीं यार वो मारुति 800 और रॉयल्स रॉयस एक जैसी लगती है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कुछ थोड़ा बहुत तो सुख दे रही है। कह रहा यार प्रॉब्लम भी देती है। मैंने क्या हुआ, कह रहा यार पीछे क्या हुआ है, वो ठुक गई मेरी गाड़ी। कह रहा यार मेरी मारुति 800 ठुकती थी, इतना दुख नहीं होता था कह रहा मेरी वो गाड़ी ठुकी, मुझे बहुत अफसोस हुआ तो उसने एक इच्छा की, इच्छा पूरी भी हो गई, लेकिन बहुत लंबे समय तक वही इंटेंसिटी, उसी इंटेंसिटी का सुख ले नहीं पाया वो। यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई एक बड़ा नया घर खरीद लें तो हफ्ता 10 दिन एक्साइटमेंट रहती है, एक्साइटमेंट फिर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वो एक्साइटमेंट है ना, वो टीवी में अच्छा लगता है कि वो पान पराग खाओ दुनिया कदमों में वो एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है जो एड बनाते हैं उनके कदमों में दुनिया आ जाती है। तो तो खाने वालों के कदमों में दुनिया नहीं आई कभी भी। कृष्ण ने जब अर्जुन ने बोला कि शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, हे कृष्णा मुझे समझ में आ गया, दो चीजें समझ में आ गई, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये। कृष्ण को बोला अर्जुन ने कि मुझे कृष्णा दो बातें समझ में आ गई हैं। कृष्ण ने बोला अच्छा बताओ क्या दो बातें समझ में आई हैं। बोला पहली बात मुझे समझ में आ गई कि मैं प्रॉब्लम में हूं। कृष्ण ने कहा वेरी गुड, तुम्हें पता चल गया ये बात है ना, तुम्हें पता चल गया तुम प्रॉब्लम में हो। दूसरी कौन सी बात तुम्हें समझ में आई है? तो अर्जुन ने कहा दूसरी बात ये समझ में आ गई कि मेरी प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है। समझ रहे हैं आप? तो जब अर्जुन ने ये बात कृष्ण को बोली तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला देखो अर्जुन आई एम सॉरी टू से बट तुमने बहुत सारी बातें बोली, वर्ण शंकर बोला, तुमने बोला मेरे परिवार की प्रथाओं का क्या होगा, तुमने बोला वंश कैसे चलेगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तुमने पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स गिनाई, सोशल प्रॉब्लम्स गिनाई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स गिनाई, तो मतलब तुम बात तो बहुत इंटेलिजेंट की तरह कर रहे थे लेकिन वास्तव में तुम मूर्ख हो। फर्स्ट सेंटेंस जैसे ही अर्जुन ने बोला कि मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूं तो कृष्ण ने इमीडिएटली उसको रेप्रीमांड किया, उसको डांटा, उसको बोला कि आप अपने आप को इंटेलिजेंट मत समझो, आप प्रॉब्लम अपने आप को इंटेलिजेंट समझने में क्या है कि अगर हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझेंगे हम दूसरे की बात सुनेंगे नहीं, इजंट इट? हम उसी की बात सुनते हैं हमें लगता है जो हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है ना। अगर हमें लगेगा कोई व्यक्ति हमसे कम इंटेलिजेंट है उसकी बात हम सुनते नहीं है, अगर मजबूरी में सुनना पड़े तो यहां से सुनते हैं यहां से निकाल देते हैं। नहीं गलत बोल रहा हूं क्या? कृष्ण ने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को इंटेलिजेंट मत समझना, मूर्ख समझना, और ये भगवद्गीता समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक ज्ञान अगर समझना है तो हमें अपने आप को मूर्ख समझना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि हो सकता है मेरी उम्र 40, 50, 60, 70 साल की हो लेकिन एक्चुअली में मैं अभी तक भगवद्गीता को आध्यात्मिक ज्ञान को समझ नहीं पाया। मेरे पास वैसे भौतिक जगत की बहुत सारी नॉलेज है लेकिन जब अध्यात्म की बात आएगी तो मुझे मानना पड़ेगा कि मैं मूर्ख हूँ, है ना। जब अगर हम ये बात नहीं मानेंगे, है ना, थोड़ी सी कड़वी बात है, मतलब अब क्या करूँ, कड़वी है तो है, है ना। तो जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्यों अर्जुन को भगवान ने बेवकूफ बोला? नहीं, अगर आप भगवत गीता का पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर के कुछ श्लोक शुरू के आप पढ़ें तो आप अर्जुन से कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ यार बात बंदा सही कह रहा है, कुछ भी कह लो बात में दम है इसकी। आप अर्जुन की बात को काट नहीं सकते लेकिन कृष्ण ने एक श्लोक बोला अर्जुन की बात को काट लिया। पहले कृष्ण ने बोला कि देखो तुम बेवकूफ हो और क्यों बेवकूफ हो वो अगले श्लोक में भगवान ने उसको बता दिया। तो वो श्लोक मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण ने बोला, ये भगवत गीता के दूसरे स्कंद का दूसरे चैप्टर का 12वां श्लोक है, न तु एवाहम जातु नासम ना त्वम एवे नेमे जनाधिपा। जनाधिपा का मतलब होता है राजा। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। कृष्ण ने बोला अर्जुन को, देखो अर्जुन एक बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, है ना, और इतना इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण ने सबसे पहले इसी श्लोक को बोल दिया अर्जुन को समझाने के लिए कि तुम क्यों बेवकूफ हो। कृष्ण ने बोला अर्जुन को, देखो अर्जुन ऐसा कभी कोई टाइम नहीं था जब तुम मैं और ये सारे योद्धा राजा नहीं थे और भविष्य में भी फ्यूचर में भी ऐसा कोई टाइम नहीं आने वाला जब तुम मैं और ये राजा नहीं होंगे। तो इससे क्या बात निकल के आई, इससे बहुत सारे कई सिद्धांत इससे निकल के आते हैं ना। पहला सिद्धांत तो ये निकल के आया कि अगर भविष्य में ये सब राजा कृष्णा अर्जुन ये सब रहने वाले हैं, और अगर प्राचीन काल में 200 500 हजार 1 करोड़ साल पहले भी कृष्णा भी थे, अर्जुन भी था, और ये सारे योद्धा सैनिक राजा भी थे, तो मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। जो राजा सैनिकों की किसी की उम्र 25 साल थी, किसी की 100 साल थी, किसी की 200 साल थी, फाइन, लेकिन किसी की 1 करोड़ साल की उम्र थोड़े ना थी वहां पे जो लड़ रहे थे, खड़े थे जो लड़ने के लिए, है ना। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन देखो, तुमने जितनी भी बातें बोली बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन शरीर के स्तर की थी। शरीर के स्तर पे बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन अगर तुम आत्मा के स्तर पे आओगे तो इन बातों में दम नहीं रहता, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों में से कितने लोग कुतुब मीनार गए हैं? बस आप लोग कुतुब अच्छा कुतुब मीनार के बारे में पता है ना सबको, वो ऊंची जो बिल्डिंग है ना। आप में से कितने लोग कुतुब मीनार पे चढ़े हैं? चलो आप चढ़े हो? मैं नहीं चढ़ा आज तक। हाँ, एंट्री बंद हो गई ना एक्चुअली में, पहले अलाउड था, है ना। किसी ने शरारत की होगी, उन्होंने एंट्री बंद कर दी। नहीं, हाँ, वो कहाँ, वो कुछ वीक हो गई होगी स्ट्रक्चर। सो अगर हम नीचे से देखें, कोई पेड़ पौधे वगैरह बहुत बढ़िया, पेड़ पौधे लोग दिखते हैं, जब हम कुतुब मीनार पे चढ़ जाते हैं तो ऊपर से नीचे देखते हैं तो कीड़े मकोड़े दिखते हैं, नहीं है ना। चलो कुतुब मीनार को मारो गोली, एरोप्लेन की बात कर लो, है ना। तो एरोप्लेन में आप कितने लोग बैठे हैं? एरोप्लेन में ज्यादा बैठे, कुतुब मीनार में कम गए। अच्छा। तो आप एक बार जब प्लेन पूरा ऊपर पहुंच जाता है, हाँ, 2 3 किलोमीटर ऊपर चला जाता है जब प्लेन, तो जब आप नीचे देखते हो तो क्या दिखता है, मतलब बड़ी से बड़ी चीज भी छोटी दिखती है, नहीं, और छोटी चीज तो दिखाई नहीं देती, है ना। सो होता क्या है कि जब हम नीचे, हमारी कॉन्शियसनेस जब नीचे के लेवल पे होती है तो हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई घरों में तो ये लड़ाई हो जाती है, दाल में नमक ज्यादा डल गया, मिर्च डाल दी, या मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनाई। नहीं, घरों में झगड़े हो जाते हैं इसके लिए, होते नहीं होते, है ना। या ठंडी हो गई सब्जी, तूने मेरे मतलब की नहीं चीज बनाई, तो पत्नी बोलती है क्या पूरा साल हो गया बनाते बनाते थक गई मैं, तुम्हारे से ये नहीं हुआ एक बार हल्दीराम पे ले जाके खिला दो। और ऐसी छोटी छोटी बातें मतलब बड़ी लगनी शुरू हो जाती हैं, या मेरी ये तूने कमीज अच्छे से प्रेस नहीं की, नहीं, या बटन टूटा हुआ है, झगड़ा हो जाता है लोगों में, ना। मैंने भी बहुत झगड़े किए हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। मैंने भी इस तरह की कई बेवकूफियां की हुई है मैंने भी। लेकिन जब आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर उठती है तो उस समय ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं लगती फिर, है ना। उस समय हमारा जो लक्ष्य होता है, जो हमारा गोल होता है, वो कुछ डिफरेंट हो जाता है। हमें लगता है यार ये छोटी छोटी बातें, फाइन, हम ये नहीं कहते कि प्रॉब्लम्स नहीं है, हम उन प्रॉब्लम से अफेक्ट नहीं होते फिर, है ना। ठीक है यार, मतलब अगर नमक ज्यादा डल गया, थोड़ा दही डाल के खा लो यार, खत्म करो बात, पेट ही तो भरना है, नहीं, फिर हम इस मोड पे आ जाते हैं, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे हम थोड़े समझदार होते हैं, तो ये जो पहले हमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लग रही थी, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं लगती, है ना। वो ऐसे इसलिए होता है ना क्योंकि शुरू में हस्बैंड वाइफ कितना झगड़ते हैं आपस में, बाद में सब सेटल डाउन हो जाते हैं, उनको गोल दिख जाता है कि जब बच्चे 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 हो जाएं तो बोलते हैं यार बच्चों के लिए झगड़ा नहीं करना, बच्चों पे बुरा असर आता है, एक हायर गोल मिल जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाते हैं, अपनी चेतना को जब हम ऊपर उठाते हैं, तो जो प्रॉब्लम हमें नीचे से बहुत बड़ी दिख रही थी वो प्रॉब्लम हमें अब बड़ी नहीं लगती। तो कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप शारीरिक चेतना से उठ के आत्मा के स्तर पे आ जाओ। तो जो शरीर के स्तर पे जो आपको प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बड़ी लग रही हैं, अगर आप आत्मा के स्तर से ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी, है ना। आप सोच रहे हो कि मर जाएंगे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई मर ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण इस श्लोक के द्वारा ये कह रहे हैं, भगवान इस श्लोक के द्वारा दो महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, है ना। एक बात तो सिंपल है, एक बात सिंपल है कि जो एकदम क्लियरली दिख रही है ना, आप पढ़ोगे हो सकता है आप भी समझ जाओ, वो क्या बात है कि कोई किसी को मार नहीं सकता। आत्मा अजर है, अमर है, उसको ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना सुखा सकता है, ना गीला कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता आत्मा को, है ना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दिखाई नहीं दे रही, कहां पर है आत्मा की। आपको साइज पता है कितना है आत्मा का साइज? जो हमारे बाल की नोक है ना, तो कोई छोटी सी होती है नोक, है ना। अगर हम अपने बाल को स्याही में डुबो के एक सफेद कागज पे हल्का सा डॉट बनाए तो हो सकता है डॉट भी दिखाई ना दे, इतना महीन होता है, बहुत छोटा सा होता है, नहीं। सो कृष्णा कह रहे हैं कि देखो ये जो जो ये वो डॉट है, उस डॉट को आप 100 से डिवाइड कर दो और जो बचेगा एरिया उसको फिर 100 से डिवाइड कर दो, तो वो आत्मा का साइज है। जब वो डॉट ही नहीं दिख रहा तो उसको हमने 10,000 से डिवाइड कर दिया, कैसे दिख जाएगा वो, है ना। तो हमें आत्मा जो है वो दिख नहीं रही, और जो चीज दिख नहीं रही हम उसको हानि कैसे पहुंचा सकते हैं, है ना। दिख ही नहीं रही वो चीज, है ना। और इतनी छोटी सी चीज को आप रख के थोड़ा मार सकते हो? दिख ही नहीं रही, मार नहीं सकते उसको। और कृष्णा भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में कह रहे हैं कि आप आत्मा को तोड़ मरोड़, उसको जमा घटा कुछ नहीं कर सकते, आत्मा जैसी है वैसी ही रहेगी। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि देखो ऐसा कोई टाइम नहीं था पहले जब तुम मैं और ये राजा नहीं थे, और ऐसा कोई टाइम आगे नहीं आएगा ना भविष्य महा, ऐसा कोई टाइम आगे नहीं आने वाला जब तुम मैं और ये राजा नहीं रहेंगे, है ना। तो ये बात बताती है कि जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। तो भगवान कृष्ण ने अगले श्लोक में इस बात को दोबारा से सीमेंट कर दिया, दोहराया दोबारा से कि जो आत्मा है वो बचपन से जवानी में एक शरीर के अंदर, बचपन से जवानी में जाती है, जवानी से बुढ़ापे में जाती है, हाँ, और बुढ़ापे से फिर तथा देहांतर प्राप्त, और उसके बाद जब बुढ़ापे के बाद में शरीर बदल लेती है। तो कृष्णा कह रहे हैं देखो बचपन से जवानी में गए, ये भी शरीर का बदलाव है, अब वो बचपन वाला शरीर नहीं है, वो छोटा सा जिसको लोग गोदी में उठा के घूमते थे, अब आपको गोदी में उठा के नहीं घूम सकते नहीं, वो शरीर नहीं है, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं है, है ना। हम कंफर्टेबल है, वी आर ओके विद द फैक्ट कि हमारे पास अब वो छोटा वाला शरीर नहीं रहा, है ना। तो कृष्ण ने कहा उसी तरह से जवानी से जब हम बुढ़ापे में जाते हैं, हाँ, तो वो भी शरीर का बदलाव है, आत्मा पे फर्क नहीं आ रहा, आत्मा पे फर्क नहीं आ रहा, शरीर बदल रहा है। और कृष्णा कह रहे हैं जिस तरह से जब बचपन से जवान हुए तो हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, जवानी से बुढ़ापे में गए तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, उसी तरह से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना तथा देहांतर प्राप्त, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना वो भी बदलाव है, उसको भी एक्सेप्ट कर लो, उसके लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तथा देहांतर प्राप्तिस धीरस तत्र ना मुहति। जो धीर व्यक्ति है, जो इंटेलिजेंट है, समझदार है, जो इस बात को समझते हैं कि हाँ यार, मतलब जीर्णानी वस्त्राणी, जो कपड़े पुराने हो गए, बूढ़े हो गए, जो पुराने कपड़े हम फाड़ के फेंक देते हैं, धोबी को दे देते हैं, बर्तन ले लेते हैं उसकी जगह पे, हमें 1% भी तकलीफ नहीं होती। हर कपड़ा जो हमारे घर में है, क्या हमें प्रिय नहीं था? हमें अच्छा लगा था, तभी तो हमने हैंगर से उतारा था दुकान पे, नहीं? जब सेल लगी थी या नई भी लगी थी, हमने कोई भी कपड़ा खरीदा, शर्ट पैंट कुछ भी हमने लिया, टोपी, हमें अच्छा लगा था तभी तो ली थी हमने। लेकिन जब वो पुरानी हो गई, हम तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। क्या हम उसके बारे में सोचते हैं, मेरी शर्ट पुरानी, वो धोबी ले गया? सोचते हैं क्या हम ऐसे? फाइन यार, घर गंद निकला, हम बोलते नहीं, बोलते यार चल साफ हो गया घर, है ना? उसी तरह से कृष्णा कह रहे हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना वो भी एक बदलाव है। तो जिस तरह पहले के दो बदलावों में हम परेशान नहीं हुए थे, हमें टेंशन नहीं हुई थी, इसी तरह से तीसरे बदलाव में भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक्सेप्ट कर लो, नॉर्मल है, पहले भी हम करोड़ों बार कर चुके हैं, है ना? और इस बात को भगवान ने आगे भी भगवद गीता में आगे के श्लोकों में बताया। भगवान ने कहा, देखो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि हे कृष्णा, ये जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, ये पहले मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दी थी। कब दी थी आपने? मैंने करीब 20 करोड़ साल पहले दी थी। अर्जुन ने कहा, क्या बात कर रहे हो आपकी उम्र 125 साल की है, तो आपने 20 करोड़ साल पहले सूर्य के देवता विवस्वान को कैसे दे दिया आपने? बात समझ में नहीं आ रही। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन देखो, तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं भी अनेक बार प्रकट हो चुका हूँ, डिफरेंस क्या है? तुम्हें याद नहीं है, मुझे सब चीजें याद है, ये डिफरेंस है। क्यों कृष्ण को सब कुछ याद है, अर्जुन को सब कुछ याद नहीं है? क्यों हम लोग बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं? हमें हर चीज क्यों याद नहीं रहती? क्योंकि हमारा शरीर बदल रहा है। जब हमारा शरीर बदलता है, हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं इसी जन्म की। पुराने जन्म की तो बात ही नहीं कर रहे, नहीं, पुराने जन्म की तो हमें कुछ भी याद नहीं है, है ना? लेकिन कृष्ण को क्यों याद रहती है चीजें? क्योंकि भगवान कृष्ण का शरीर कभी भी बदलता नहीं है, जैसा है वैसा ही है ना? पुरातन है, एकदम प्राचीन है, नव यौवनम च, बहुत पुराना कृष्ण जो है, पूरी सृष्टि से पहले कृष्ण मौजूद थे। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, कृष्ण जो है पूरी सृष्टि से पहले थे, उन्होंने ही सृष्टि की, उन्होंने ही ब्रह्मा जी को बोला फाइन जाओ जाके सृष्टि कर दो, है ना? तो सृष्टि से पहले ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी से पहले भगवान मौजूद थे, और सृष्टि की इच्छा हुई, उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि करनी शुरू कर दी भगवान की इच्छा से, है ना? तो सृष्टि तो करोड़ों अरबों साल पुरानी है, तो भगवान भी करोड़ों अरबों साल पुराने होने चाहिए हैं, लेकिन दिखने में कैसे लगते हैं? नव यौवनम च, एकदम 16 साल के जवान लड़के लगते हैं। भगवान कृष्ण की उम्र जो है 16 साल से आगे कभी नहीं बढ़ती, कभी नहीं बढ़ेगी भगवान कृष्ण की उम्र 16 साल से आगे। आप कितनी फोटोज देख लो, भगवान कृष्ण हमेशा यंग, और यंग भी 25-26 साल वाले यंग नहीं, 16 साल वाले, 15-16 साल वाले यंग लगते हैं कृष्णा, है ना? सो कृष्ण ने कहा कि देखो, तुम बहुत बार जन्म लिया तुमने, मैंने भी बहुत बार, यहाँ पे मैं प्रकट हुआ हूँ, तुम्हें याद नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये समझ लो कि बार बार भूतवा प्रलीत है, बार बार हम लोग जन्म ले रहे हैं, बार बार लोग जो है जन्म ले रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म ले रहा है उसकी मृत्यु निश्चित है, है ना? और जो मर रहा है उसका जन्म भी निश्चित है, है ना? ये कहाँ बोल रहे हैं भगवान? ये भगवान भगवद गीता के दूसरे चैप्टर में बोल रहे हैं, आप पढ़ लेना, है ना, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो, है ना? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। सो भगवान ने बोला कि आप लोगों के मरने से चिंतित हो, आप ये चिंता छोड़ दो, कोई किसी को नहीं मार सकता, ना कोई तुम्हें मार सकता है, ना कोई तुम्हें मरवा सकता है। एक होता ना कि हम गए किसी से लड़ाई हुई, हमने किसी को मार दिया, चलो हम कमजोर हैं, किसी और से मरवा दिया। तो कृष्ण कह रहे हैं देखो, ना कोई तुम्हें मार सकता है, ना कोई तुम्हें मरवा सकता है, दोनों चीजें नहीं हो सकती, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये तो सिंपल प्रिंसिपल है, बहुत महान प्रिंसिपल है, लेकिन सिंपली समझ में आ रहा है ना। एक दूसरा सिद्धांत जो भगवान ने इस श्लोक के द्वारा स्थापित किया, कौन सा श्लोक था? ना तो एवाहम जातु नासम ना तो नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्याम सर्वे वयम अतः परम, कि पहले भी मैं तुम ये सब राजा थे, आगे भी हम लोग रहेंगे, है ना। इससे एक और सिद्धांत भगवान ने स्थापित किया कि देखो, कोई भी व्यक्ति किसी में लीन नहीं होता। मायावादी एक कई साधु हैं, ऐसे संत हैं हिंदुस्तान के अंदर स्पेशली, वो बोलते हैं कि देखो मरने के बाद हम भगवान में लीन हो जाएंगे। कृष्णा इस पहले श्लोक से बोल रहे हैं कि भैया कोई किसी में लीन नहीं होता, तुम्हारा अलग अस्तित्व बना रहेगा, मेरा अलग अस्तित्व बना रहेगा, हम दोनों कभी आपस में ऐसा नहीं है कि दोनों मिलके एक बन जाएंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। जो लोग बोलते हैं ब्रह्म लीन हो गए, भगवान के शरीर में समा गए, भगवान के प्रकाश ज्योति के अंदर विलीन हो गए, वो सब बकवास है, ढकोसला है। कृष्णा पहले श्लोक में, पहले अर्जुन को जो शिक्षा दे रहे हैं, उसके पहले श्लोक से ही भगवान इस बात को काट रहे हैं, मायावादियों का सिद्धांत भगवान हटा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसा कभी होने वाला नहीं है, आपका अलग अस्तित्व बना रहेगा। अब आप लोगों को ये सोचना है कि जब हमारा अलग अस्तित्व बना ही रहेगा, और अगर हम बात करते हैं जन्म मृत्यु से बाहर निकलने की, तो जन्म मृत्यु से बाहर निकल के हम आखिर क्या करने वाले हैं, है ना। इस प्रश्न के उत्तर में हम आपको अलग से इसके बारे में चर्चा करेंगे। कई मायावादी बोलते हैं देखो, जैसे एक तोता है, तोता उड़ता हुआ आया, हमें दिख रहा है तोता वो आ रहा है उड़ता हुआ, वो जाके एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है उसमें घुस गया, है ना। तो मायावादी बोलते हैं देखो, जो तोता पेड़ में समा गया दिख ही नहीं रहा। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है उसको पता है यार दिख नहीं रहा कोई बात नहीं है, लेकिन है उसके अंदर ये अलग से, नहीं ऐसा थोड़ो ना कि तो जो तोता उड़ता हुआ पेड़ में गया और उसके अंदर ही पेड़ ही बन गया वो, है ना। उसके अंदर एक टहनी पे वो बैठा रहता है, पत्तों से छिप जाता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो तोता है वो पेड़ के अंदर लीन हो गया, एक हो गई दोनों चीजें। कुछ टाइम के बाद जब उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वो फिर से उड़ेगा और पेड़ से बाहर आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग भी भगवान के शरीर में अनेक बार समा चुके हैं, लेकिन जब टाइम आता है हम भगवान के शरीर से बाहर आ जाते हैं और हम अलग अलग तरह का शरीर धारण करते हैं, और उस शरीर के अनुसार हम लोग अलग अलग तरह का काम करना शुरू कर देते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कभी भी होने वाला नहीं है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति कह रहा है मृत्यु के बाद अस्तित्व खत्म हो जाएगा, या मैं आपको ऐसा कोई मंत्र बताता हूँ जिससे कि आप ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओगे, आप प्लीज इस बात को समझ लो, वो सब ढकोसला है, बकवास है, उसके मुंह पे थप्पड़ मारो और उसकी बात बिल्कुल मत सुनना। क्योंकि भगवान कृष्ण इस बात को बिल्कुल पहले श्लोक में ही भगवद गीता के काट रहे हैं, है ना। हम किसी ढोंगी बाबा की बात सुनेंगे या कृष्ण की बात सुनेंगे तो डेफिनेटली हम कृष्ण की बात पे विश्वास करेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, उन्होंने ही पूरे वेदों की रचना की है, वेदांत विद वेद विद एक चाव, उन्होंने ही वेदों को बनाया है, उन्होंने वो ही वेदों के ज्ञाता है और वेदों के द्वारा उन्हीं को जानने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के अलग जाकर अगर कुछ बताने की कोशिश करता है, प्लीज उसकी बात को सुनकर उसकी बात पर विश्वास करके टाइम वेस्ट नहीं करो, ठीक है। हरे कृष्णा।